Hello. कहा जाता है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणं मात्रेण हरे निष्ठितं समाश्रये। अगर कोई कोई ऐसा आगे भरी भावना तो ऐसी तो होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इलाका बहुत ही इस तरह से आपका होगा कि अपना सब स्टेटस भूल जाएगा तो क्या करना आ गई। लेकिन नहीं, कहा जाता है सदा सेवा सदा सेवा, इसमें भागवत का सदा सेवा करनी चाहिए, सदा सेवा करनी चाहिए क्योंकि जो भी शिक्षा दी जा रही है वो कोई ना कोई ऐसी हमारी पुरानी बीमारी को उखाड़ करके बाहर निकालने की दी जा रही है कि उसका परिणाम क्या हुआ। ये कथाएं ऐसी कभी कभी श्रीमद् भागवत में इसलिए रखती है कि जो बीमारी है जो बहुत चिपकी होती है, कई बार बर्तन में होता है ना कुछ ऐसा, जब हम उसकी सफाई करते हैं तो कुछ ऐसी गंदगी होती है जो बहुत पहले से चिपकी होती है और उसको खाना चीने में बहुत बहुत समय लगता है। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसमें भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, नेवर मिस। खासकर से पुरुषोत्तम मास का महात्मा आपने जितना सेवन किया होगा, पुरुषोत्तम मास के महात्मा ने लिखा है कि जितने भी तपस्याएं हैं जितना भी साधनाएं हैं उनमें से सबसे सुप्रीम सबसे नंबर वन है उसमें भागवत होता है। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम मास आने पर एक तराजू लिया था और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को बहुत सारी साधनाओं को एक पगड़े में डाला और एक पगड़े में डाला श्रीमद् भागवतम को, तो पगड़ा जब उठाया श्रीमद् भागवतम का पगड़ा बहुत भारी था, यानी कि ये जो पुरुषोत्तम मास है इसके अंदर श्रीमद् भागवतम को ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। कहा जा रहा है सदा सेव्या सदा सेव्या, होगा कैसे यशा श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से हरे निश्चितं समाश्रये। निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के प्रति हमारी आसक्ति हमारा प्रेम जागृत होगा, ये तो जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। एक बार हरि नाम ने हमें हरि नाम से प्रेम हो जाए, भक्तों से प्रेम हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य है जो कि श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत के महत्व से एक रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो कि देवानंद पंडित के साथ आपने महाप्रभु इस बात को भगवान जानते थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन उसके द्वार पर आए और भगवान ने उसको बहुत डांटा। तुम क्या कर रहे हो, ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो मेरे हृदय से, जो मेरे हृदय में वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया था और तुम जो हो श्रीमद् भागवतम का क्या कर रहे हो। तो भगवान ने बड़ी ऐसी कंपैरिजन दिया उसको कि जो श्रीमद् भागवतम का ऐसे सम्मान नहीं करता उसकी हालत क्या होगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो व्यक्ति खा पी करके पेट को बहुत मोटा कर लेता है ना, और कभी कभी उस व्यक्ति को फिर कहीं वॉशरूम जाने की जगह नहीं मिलती तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि कहाँ जाऊँ यहाँ, क्योंकि प्रेशर बहुत है। और फिर भाग्य से अगर उसको कोई जगह मिल जाए, भाग्य सौभाग्य से उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो प्रेशर को रिलीज कर सकता है तो उसको बड़ा सुख मिलता है। अरे बच गया, सारे कपड़े भी खराब हो जाते। महाप्रभु बोले कि तुझे जो सुख उसको मिलता है उस मत त्याग करने वाले को, वो सुख तुझे श्रीमद् भागवत की कथा करने से नहीं मिलेगा। तो क्या श्रीमद् भागवत का गुण गोबर कर रहा है, तो श्रीमद् भागवत का इतना सम्मानित ग्रंथ है। महाप्रभु ने ऐसा लगातार देवान पढ़े तो देवान पढ़े खुल कर पानी पानी हो गए सुन करके, और फिर बाद में स्मृति पार्षद है बाद में से सुना ऐसा की और खा दी महाप्रभु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो भले ही इसमें इस प्रकार की कथा आ रही है, आज कथा में जैसे कि हम देख सकते हैं इस प्रसंग के अंदर आ रहा है कि सोम ने, जैसे आपने इसमें देखा जो मैंने पढ़ा श्लोक, कि सोम यानी चंद्रमा ने तीनों लोगों को जीत लिया। एक ऐसा भी हुआ कि तीनों लोगों को जीत लिया चंद्रमा ने सोम ने, और उसके बाद फिर राज सूर्य संपन्न किया। लेकिन उससे हुआ क्या, उसमें आ गया, उसके अंदर गर्व आ गया। अत्यधिक गर्व होने के कारण यानी जब हमारे पास पोजीशन होती है, पावर होती है, तो उससे इस चीज का डर रहता है, इस चीज का उसने गर्वित होने के कारण, गर्व के कारण अपने गुरु इसके बाहर नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। देखिए देवताओं के गुरु हम बृहस्पति और चंद्रमा स्वयं देवता है, अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया। इससे पता चलता है कि भगवान ना करे किसी का शक्ति पावर आए और गर्व आए। इतना बड़ा क्राइम कर दिया उसने कि उसने अपने बृहस्पति की पत्नी तारा का पल को हरण कर लिया, और हरण ही नहीं किया, गुरु बृहस्पति ने सोम से बार बार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, मेरी पत्नी लौटा दो भाई। तो क्या किया तुमने? उसने नहीं लौटाया, नहीं, यह उसके मिथ्या गर्व के कारण था। मदा श्लोक आया, शब्द आया था मदा, मद से ही मदिरा बनती है। जब कोई मदिरा पीता है तो वो भूल जाता है, तो क्या कर रहा है। तो मद जब आता है तो किसी के अंदर मद की भावना आती है, भले ही मदिरा ना पी हो तब भी वो भूल जाता है, तो क्या कर रहा है। तो मद और मदिरा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें थोड़ी बदबू आती है इसके शुरू पान करने से, लेकिन इसमें भी बड़ी भारी बदबू आती है जब किसी में मद आ जाए तो, क्योंकि वो जानता है वो क्या हो रहा है और बड़ा ही पाप कर्म किया, तो वो उसने फिर भी नहीं लौट पाया और फलस्वरूप फिर देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया। और आज का श्लोक बृहस्पति तथा शुक्र की मध्य शत्रुता होने से अब दोनों में युद्ध हो गया। देखिए बृहस्पति ने कहा कि ठीक है तुम मेरी पत्नी नहीं लौटाते तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अब सोम यानी चंद्रमा और बृहस्पति ने युद्ध छिड़ गया। अब शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु हैं, उसने उनकी और बृहस्पति उनकी आपस में हुई द्वेष होता है, दोनों पक्षों के पक्ष हैं, तो उन्होंने सोचा अगर ये अच्छा मौका है आपको देवताओं में आपस में लड़ाई, तो उन्हें चंद्रमा का पक्ष ले लिया और अपने साथियों और भी असुर आ गए। जब एक नेता आ गया तो सारे लोग भी, बाहर के लोग भी आ गए, किंतु दूसरी ओर क्या हुआ, अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिवजी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में बोले। इधर शिवजी के गुरु बताए जा रहे हैं यहाँ पर अंगीर ऋषि, जैसे बहुत अच्छे तात्पर्य ने लिखा कि शिवजी ने अंगीर से ज्ञान प्राप्त किया था और अंगीर के पुत्र हैं बृहस्पति, अंगीर के बेटे, तो शिवजी ने अंगीरा से ज्ञान प्राप्त किया था। कब, कहां, कौन सा ज्ञान लिया था, ये आता है विष्णु पुराण के अंदर आता है कि शिवजी ने अंगीरा से एक बार ऋग्वेद का ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया था। ऋग्वेद जो बहुत ही कठिन है ये चाहोगे, तो शिवजी एक बार अंगीर ऋषि के समक्ष नामक हुए और उनसे कहा मुझे इस वेद में जो जो शिक्षाएं हैं वो दीजिए। तो अंगीर ऋषि ने उनको ऋग्वेद की शिक्षाएं दी, इसलिए शिवजी को बड़ा स्नेह था कि तो मेरे गुरु के पुत्र हैं बृहस्पति, तो उन्होंने उनका पक्ष लिया और फिर उनके साथ भी उनकी सेना आ गई। और शिवजी के साथ सेना होती है कौन सी, रुद्रेत होती है, तो वो भी अपनी सेना लेकर आ गए और युद्ध छिड़ गया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ कि देवता भी और असुर भी दोनों ही बर्बाद हो गए, क्योंकि भारी युद्ध हुआ। तो हम देखते हैं कि इस जो ये युद्ध हुआ, जो इतने नुकसान हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इसके पीछे क्या मेन कारण है, कौन कौन से कारण है, ऐसे हमारे लिए इससे क्या शिक्षा निकल रहा है। तो पहला वो ये निकल रहा है कि चंद्रमा ने चूंकि तीनों लोगों को जीत लिया था, उसके पास पोजिशन आई, पावर आई, शक्ति आई, तो शक्ति के कारण उसके अंदर मत आ गया, मत के कारण ऐसा हुआ। दूसरा इस सारी समस्या का केंद्र बिंदु मिलता है स्त्रियों के प्रति आकर्षण, जबकि हम देखते हैं चंद्रमा जो है, सोम जो है, उनकी कितनी पत्नियां थी, 27 पत्नियां थी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 27 पत्नियां हैं, वो भी अपने गुरु के पास जाकर के अपने गुरु की पत्नी को हरण करके ले गया और हरण हरण नहीं किया, युद्ध भी किया और साथियों से संतान भी उत्पन्न कर दी, जो तारा नाम था उनका बृहस्पति की पत्नी का, उनसे बुद्ध नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। हालांकि ये दूसरी बात है कि जो रूल रेगुलेशंस इस मृत्यु लोक में होते हैं वो स्वर्ग लोक में नहीं होते। जब रोशि आई थी अर्जुन के प्रति आशा हुई थी तो अर्जुन ने कहा था आपको मेरे रिश्ते में पूर्णिमा की पत्नी हो तो आपको बहुत मेरी सम्मानीय हो, तो रोशि ने अर्जुन को कहा था कि ये रूल रेगुलेशन रिश्ते नाते वो पृथ्वी लोक में चलते हैं, यहाँ स्वर्ग में हमारे नहीं चलते ये सब। तो इसलिए अर्जुन को उसने श्राप दिया था। और क्या श्राप दिया था अर्जुन को? कि वो विपुंसक बन जाएगा उस समय के लिए जब जन्म देते हैं वो जो उत्तराखंड ने संगीत का उपदेश दिया था, तो निश्चित रूप से वो श्राप ओरोशी का ही था। तो आज के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से जो बात आ रही है वो आ रही है कि इतना ज्यादा सुविधा होने के बावजूद भी इस पुरुष तमाम की तरह से दूषित होता है और यहां तक कि गुरु के पत्नी के प्रति अपराध कर देता है। हालांकि तारा नाम की स्त्री से के हम अगर देखें शास्त्रों में एक और भी तारा हुई थी और उसके कारण भी भाई भाई में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए थे और एक भाई को मरना पड़ा था। आप जानते हैं कौन सी तारा है वो? सुग्रीव और बाली, बाली की पत्नी का जन्म तारा और तारा के कारण ही पूरा दोनों भाई खून के एक दूसरे के खून के प्यास से बन गए थे। श्री श्री कृष्ण की तो हम देखते हैं कि तारा नाम की स्त्री कारण पहले भी ऐसे हुआ और देवताओं को हम देखते हैं कि समुद्र की पुत्र की यानी ये पाप किसने किया, ये दुष्कर्म किसने किया? सोम ने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि देव ने ऐसा किया एक बार। समुद्र की पुत्र का नाम था शतद्रुति जिसका विवाह हो रहा था राजा प्राचीन पर ही से और वहां पर अग्नि जलाई हुई थी और सात फेरे ले रहे थे वो राजा प्राचीन पर ही। और जब फेरे हो रहे थे तो अग्निदेव अग्नि में से प्रकट हो गए और प्रण करने का प्रयास किया शतद्रुति को यानी राजा प्राचीन पर ही की पत्नी को। तो अग्निदेव की ये स्थिति है, इधर सोम चंद्रमा की ये स्थिति है, इंद्र का हम जानते हैं गौतम ऋषि की जो पत्नी की अहिल्या है उसके साथ उसने ऐसा बिहेव किया। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रह्मा जी बहुत सृष्टि की शुरुआत में एक स्त्री की रचना की जो कि स्वयं पुत्र थी वो भी अपने पुत्र के पीछे भागे। शिव जी को हम यहां तक ही देखते हैं जैसे मोहिनी अवतार दिखाया गया तो शिव जी ने कहा कि ना 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 मैं ऐसा नहीं करूं, मैं आज तक नहीं हूंगा और साक्षात पार्वती की उपस्थिति में वो पीछे पीछे भाग गई। इसके अलावा एक शुकी नाम का देवता है, उसने भी जब सप्तषियों की पत्नी वहां थी प्रतिष्ठा कर रही थी तो उसने भी उनका भोग करना चाहते पीछे भाग गई। तो देखते हैं कि ये जो बीमारी है भोग करने की, ये जो स्त्री में आकर्षण है या स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण है, ये बहुत ही ऐसी बीमारी है कि बड़ी मुश्किल से जाती है। बड़े बड़े कभी कभी देखते हैं कि सन्यासी, तो ये प्रश्न पूछा उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से ग्यारहवें में कथा आती है। उद्धव ने पूछा हे कृष्ण ऐसा क्यों होता है कभी कभी कोई व्यक्ति इतना भक्त बन जाता है, इतना सन्यासी भी बन जाता है, सन्यासी होने के बावजूद भी वो ऐसे क्यों करता है? वानप्रस्थी कहलाता है। वानप्रस्थी समझते हैं, वानप्रस्थी का मतलब अगर सन्यास ले लिया आपने लेकिन फिर से अगर व्रत भंग गए, इसको माना जाता है कि उसने मूर्टी कर दिया, उल्टी कर दिया, फिर से उसको चाट पड़ा है। तो उद्धव जी कह रहे कि ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ज्ञान समझाता है ये उद्धव, वास्तव में जब कोई भगवान की ओर आकर्षित होता है ना, जब कोई मेरी ओर आकर्षित होता है तो देवताओं को समस्या हो जाती है और देवता लोग क्या करते हैं कभी कभी किसी स्त्री का रूप धारण करके उसके सामने आ जाते हैं और उसको ले जाते हैं वहां से, मेरे पक्ष से हटा देते हैं। आपने देखा होगा जब कभी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो देवता हमेशा आकर कुछ ना कुछ करते हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ जैसे हुआ। तो जब भी कोई भक्ति के मेरी ओर आता है तो कुछ न कुछ ऐसा होता है। स्त्रियों के लिए नहीं है कि वो ब्रह्मचारी रहे, स्त्रियों माने जाती तब पूर्ण होती है जब वो विवाह होती, नहीं तो स्त्रियों को अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन नहीं कि स्त्री को भी प्रचारित रहे या सन्यासी करें। हाँ, एक सची देवी हुई जो बाद में उनका माता गोस्वामिनी के नाम से जानी जाती है, सन्यास लिया उन्होंने और 192 माता चक्रवर्ति श्री चैतन्य लीला में आती है कि वो ऐसे ब्रह्मचारिणी रही और राजा की पुत्री राजकुमारी थी, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सामान्यतः एक भाव यह है कि स्त्रियों के लिए मनाई है कि वो ब्रह्मचारी रहे या सन्यास ले। तो वास्तव में फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहिए। शंकराचार्य जी एक अपने मूल मंत्रों में लिखते हैं कि संसार में बहुत बहादुर लोग हैं, लेकिन असली बहादुर वो होता है जो स्त्री के नए बाणों से अपनी सुरक्षा कर पाए। बड़े से बड़े महाअति भी लड़क जाते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि ने नृपों की आवाज सुनी और इतनी तपस्या रख दे, लेकिन वो नृपों की मात्र आवाज श्रवण करने से पतन हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि फिर क्या ऐसे उपाय है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो हमारी छुपी हुई गंदी आदतें हो रही है वो थोड़ा निकलने में समय लगता है। आमतौर पर जो हमारे जो विधि विधान है, नियम है, उनको जब हम फॉलो करते हैं तो आसानी से चाय कॉफी लसन प्याज ये छोटे छोटे जो पापक्रम है छूटते चले जाते हैं। लेकिन ये जो बीमा की है ये अंदर की अंदरूनी होती है और इसको कोई बाहर से जज नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के अंदर बाहर से भक्त करना है, अंदर जो हो सकता है पता नहीं क्या चल रहा हो। ये तो शुक्र ब्रह्मा ने हमें आंखें ऐसी ही थी, अगर हमें आंखें ऐसे वाली थी होगी तो क्या होगा, कोई साइंस की पुस्तक नजर आती ना कि यहाँ से बैक्टीरिया जा रहा है, इसका मन इतना ये लिख रहा है, ये सुन रहा है, इसलिए ये चल रहा है, यहाँ खून यहाँ से गया। क्योंकि भगवान ने अच्छा किया कि ऐसी आंखें नहीं थी, इनको भग रहे होगी आप अपने झगड़े हो चुके। तो कहा गया शास्त्रों में कहा गया कि जब कोई जैसे कथा आती है छोटी सी कि एक बार एक बिच्छू और एक ऊंट था, तो ऊंट जो है नदी के किनारे था वो पार कर रहा था नदी को, तो बिच्छू ने कहा कि भैया ऊंट मुझे आप पार करा दो, ये नदी क्या। तो ऊंट ने कहा कि भैया पार तो करा दूंगा लेकिन आपकी आदत बड़ी खराब है, आप जिसके संपर्क में आप उसे डंक लेते हो तो डंक मार देते हो, इसलिए मैं आपको ही पार करूंगा। बिच्छू ने कहा भैया प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा, चूंकि देखो आप तो मेरी मदद करोगे मैं आपको क्यों ऐसे डरे कराऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रॉमिस नहीं प्रॉमिस, उन्होंने कहा कि वो बैठ जाओ। तो ऊंचा होता है तो निकल गया। अब नदी पार जब करने वाले थे तो जो चोरी से जाए मेरा कैसे मैं जाए, तो बिच्छू ने जैसे ही देखा कि पार होने वाले कल हो जाए और कल लगाते ही ऊंट तड़पने लगा रोने लगा, इतने गले कहा था कि आपने क्या किया आपने। तो बिच्छू ने क्षमा मांगी, भैया क्या करो असल में मेरी आदत ही ऐसी है, मैं अपनी जो अंदर की जो गंदी आदत है जो मेरी पक्की आदत है वो जाती नहीं, मैं क्या करूं। ठीक ऐसे एक बार हमारे स्टॉक में भी फुल टाइम डिवोटी बन गया एक भक्त जो पहले चोर था वास्तव में, और भक्तों के संपर्क में पुलिस स्टेशन में आ गया और भक्तों ने उसको कन्विंस किया तो वो अंदर आ गया। तो मेरा फुल टाइम डिवोटी बन गया या ट्रेनिंग ले, लेकिन वो पहले क्या करता था चोरी, और रात जब हुई उसको तो फिर से वही शरीर में खून दौड़ने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा आप मैं भक्तों के बीच में आ गया हूँ, अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए। उसने बड़ा समझाया अपने मन को, लेकिन फिर से ढोली था, फिर से वही उसके मन में आया कि उसको चोरी करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे रह सकता हूँ बिना चोरी के, कैसे रह सकता हूँ, मेरा पुराना व्यवहार। तो चुपचाप उठा और जितने भी ब्रह्मचारी थे सबके कपड़ में गया, उसके कपड़े उसमें रख दिए, उसके कपड़े उसमें रख दिए, बोले चोरी नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा उसको कर देता हूँ। तो सबके कपड़े आपस में चेंज कर लिए और सुबह उठे तो सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्या हुआ मेरे कपड़े किसने निकाले। तो वो आके समय करने लगा, भाई ऐसा मैं पहले ना चोर था और अब मैं आपको इस समय आ गया हूँ और उसे रह भी गया, इसलिए मैंने आपके कपड़े में इधर उधर थोड़ा कर लिए, क्षमा करना। तो ये पक्की बीमारी कैसे जाएगी। वास्तव में इसके विषय में बताया गया है कि जब कोई वैष्णवों के सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा में पर्सनल सेवा करता है, जब हम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो बड़ी जो समस्या है जो बाहर की समस्या है वो दूर हो जाती है, लेकिन जो आंतरिक समस्याएं होती हैं जब हम देखते हैं कि ये नहीं जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वैष्णवों के शरणागत होना चाहिए और मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए कहीं की कोई वैष्णव सेवा मिल जाए उस सेवा में अपने आपको लगाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ये तो अभी वैष्णव है इसकी मैं क्या सेवा करूंगा। हमें अपना लाभ देखना है, जैसे वरदराज के सामने उनको वरदराज जी ने नहीं कहा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया वैष्णव की सेवा नहीं करोगे तब तक आपको वो करवा नहीं मिलेगी, मेरा नाम नहीं मिलेगा। तो वैष्णव की जब हम पर्सनल सेवा करते हैं तो जो अंदर की जो बीमारी है जो चिपकी हुई है बहुत समय से वो कब जाती है, नहीं तो नहीं जाती। लेकिन इसके परिणाम देखिए क्या है, एक श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका हिंदी अनुवाद मैंने नोट किया आपके लिए, कि जब कोई अवैध संबंध बनाता है अपनी पत्नी के लिए तो जाने के पहले क्या कहते हैं मातृवत परदारेषु, दूसरे अपनी पत्नी के लिए दूसरे की स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपने पत्नी के लिए किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसके उसको वही दंड कौन सा निश्चित होगा, उसका दंड कौन सा मिलेगा उसे। शास्त्रों में ये जिज्ञासा की गई है, एक व्यक्ति ने ऐसे संबंध बनाया तो उसको दंड वो दंड दिया जाएगा जो चाणक्य पंडित ने कहा, उसको वही दंड दिया जाएगा जो कि उसने अपने पत्नी के फिर संबंध बनाया। इसलिए मात्र पैदा माता के साथ अगर वो संबंध बनाता तो वो कितना बड़ा क्राइम होगा वो दंड उसको दिया जाता है। ठीक ऐसे स्त्रियों के लिए अगर स्त्री अपने पुरुष के अतिरिक्त किसी बाहरी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके लिए भी वही दंड दिया जाएगा जितना कि वो अपने भाई और अपने पिता के साथ संबंध बनाती है, उसके लिए वो दंड का विधान है शास्त्रों में। क्यों? चूंकि उसने पत्नी के अतिरिक्त, तो इसमें कभी कभी ऐसा भी आता है कि कभी कभी व्यक्ति पाप नहीं करता फिजिकली लेकिन मन से करता है, अगर कोई माता जा रही है कोई प्रभु जा रहा है कोई स्त्री, अगर देखिए अपराध की शुरुआत होगी सूक्ष्म अपराध, मन से ही अपराध नहीं करना चाहिए खासकर से भक्तों के बाद, क्योंकि कई बार भक्तों से हम सुनते हैं कि मन से जो अपराध करते हैं वो कलयुग में कार्य नहीं करते, लेकिन हम हरे कृष्णा के जो भक्त हैं कलयुग में नहीं है वास्तव में, हम लोग कलयुग से बाहर हैं। इसलिए हम अगर मन से भी अपराध करेंगे तो हमको हमें दंड मिलेगा, इसलिए सूक्ष्म अपराध ही करना चाहिए। कि मन से भी हम किसी स्त्री के प्रति ऐसा सोचे या किसी पुरुष के प्रति स्त्री ऐसा सोचे तो वो दंड उतनी मात्रा में दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए ब्रह्मचारी को दंड क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को नहीं ग्रस्तों को भी। अगर एक किसी माता से जब बात कर रहे हैं तो आंखों से आंखें नहीं मिलाने का प्रयास करना चाहिए, और साथ में एक सेंटेंस से कम दो बार माता जी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी माताओं से जब बात की जाती है तो असावधान थोड़ी सी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ग्रस्त हूं मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैं तो माताओं से बात कर सकता हूं और प्रचार के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री गोपाल जी एक जगह बताते हैं कि जब माताओं से बात की जाती है माताओं से डीलिंग की जाती है तो भक्तों को ऐसे सावधान रहना चाहिए जैसे कि सांप के साथ डीलिंग में व्यक्ति सावधान रहता है कि कहीं से दूसरे को वो डर मार सकता है। तो भगवान जी ने इसको बहुत सावधान होने बताया, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, और भगवान के धाम जाने में अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी की तो बहुत समस्या हो सके। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो देखिए जैसे मैंने आपको गिनाया कि इंद्र अनिल पर ब्रह्मा जी स्वयं पुत्र पर शिव जी मोहिनी पर शोकी प्रतिष्ठा में अग्निदेव महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर स्थापित किया हम लोगों के लिए, वो हमारे नेता है वास्तव में। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास पंडित के से जब मिलते थे तो ये भी अपने मुंह से उच्चारण नहीं करते थे, इससे हम भक्तों को सावधान होना चाहिए कितना सावधान रहना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये भी नहीं कहा कि श्रीनिवास तुम्हारी पत्नी कहां है, पत्नी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हमेशा ये कहते थे श्रीनिवास तुम्हारी प्रकृति कहां है, प्रकृति शब्द का प्रयोग किया स्त्री शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं तो इतना पवित्र हूं एक काट की स्त्री भी अगर बनी हो तो उससे भी मेरा मन दूषित होने के चांसेस हैं। तो सोचिए कि हम लोगों को फिर कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, जो हमारे लीडर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वो बोल रहे हैं कि काठ की स्त्री में भी मेरा मन आसक्त हो सकता है। हम लोगों को तो उससे कहीं ज्यादा आसक्त होना पड़े श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात पर भगवान है, लेकिन वो हमें शिक्षा देने के लिए, उनका स्वयं का मन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा उपदेश ऐसा आसन हमें सिखा रहे हैं। अगर हमने अपने ये जीवन देखिए, चूंकि हम ये सारे भोग जितने भी काम वासना ये जितने भी है ये सारी में भरपूर मात्रा में कर चुके हैं, इसलिए रोबा जी बनाने का मैंने इसलिए रोबा जी ने अपने शिष्य को क्या कहा, ये सब पाप कर्म तो कर चुके हो हरि योनियों में, केवल एक जीवन मुझे दे दो, केवल ये जीवन मुझे दे दो और भगवान की सेवा में, सिर्फ एक जीवन भगवान की सेवा में दे दो तो आपका क्या होगा, आप सदा सदा के इस जंजाल से इस कैद से निकल जाओगे। तो वास्तव में जो व्यक्ति आसक्त होता है अपनी इंद्रियों के कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियों से कंट्रोल होता है, उसको ऐसा ही समझना चाहिए जैसे जेल में कैदी के हाथों में हथकड़ियां लगी है, बेड़ियां लगी, वो बेड़ियों में ग्रस्त है और कैदी की तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा है। बहुत इतने बड़े बड़े देखिए, जिस व्यक्ति ने तीनों लोगों को जीत लिया हो, राजसूय जो किया हो, इतना फॉल डाउन हो गया। आज हम देखते हैं कि ये जो भौतिक शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है, विद्यालयों में, आईआईटीज में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में जो दी जा रही है, इसे क्या उदाहरण होकर आ रहा है, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट कहा जा रहा था पहले, लेकिन लगता है ये बहुत पुराना हो गया इस लोगों का। अगर हम आज की सोसाइटी में जाकर देखें करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो कुछ नहीं, तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये भी ऐसे न्यूज़ सुनाई को देते हैं कि पापा आपका कोई बड़े बड़े जज, बड़े बड़े डॉक्टर्स, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली जो प्रभुपाद के छाया में आ रहे हैं, हम लोगों को कम से कम इसके प्रति सावधान होने का कोई हमें मार्ग बता रहा। तो एक तो ये विषय आज के शुरू में था, इसके बाद इसके अंदर एक और शब्द आता है, इस श्लोक पर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, जैसे इसमें एक शब्द आया कि मिथ्याभिमान के कारण, इसका मतलब है अभिमान दो प्रकार का होता है, प्रभुपाद जी ने इसमें ट्रांसलेशन किया मिथ्या अभिमान, फॉल्स ईगो। तो अभिमान एक सच्चा अभिमान होता है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, और मिथ्याभिमान क्या होता है, मैं ये शरीर हूं, या हमारी और भी ईगो, ईगो जो होती है टॉलरेंस पावर, जिस भक्ति के अंदर नहीं होगी वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि देखिए कुंती महारानी ने बहुत ही सुंदर श्लोक का उच्चारण किया है कि कौन हे प्रभु आपको प्राप्त कर सकता है, जन्मेश्वरी सुता है श्री विनेद्रमान मद कुमान नैवानित्यपि धातु त्वामकिंचन गोचरम। जो व्यक्ति अपना जन्म ऐश्वर्य ज्ञान सौंदर्य पर गर्व करता है, अपने जन्म ऐश्वर्य ज्ञान सौंदर्य पर गर्व करता है, ये चार जो है बाधाएं अंत में भगवान की भक्ति है। उच्च कुल में जन्म, बहुत ऐश्वर्य और ऊंचा ज्ञान और सुंदर होना, जिसके पास ये चार होती है वो भक्ति में आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। प्रभुपाद जी कहने लगे जिसके पास ये चारों है और अगर वो फिर भी भगवान की भक्ति में लग जाए, इसे यही समझना चाहिए उसके ऊपर भगवान की विशेष 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 कृपा, इनको बड़ा कठिन है जो चाहो जिसके पास हो। तो बुद्धि महाराज आगे कहते हैं हे प्रभु आपके चरणों को वो प्राप्त नहीं कर सकता, आप तो केवल उनको प्राप्त होते हो जो अकिंचन तथा वीर उस सहज उपलब्ध हो जो अभिमानी नहीं है, जो अकिंचन है अगोचर है जो अभिमानी नहीं है आप उसको प्राप्त होते हो। भगवान का और अगवान, अगवान एक शब्द होता है, अगवान का मतलब है जो वक्त जिससे थोड़ी सी भी आगे के मैं भगवानिया हूं धन्य भूली इतने तपस्या कर रहा हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, छोटी सी घटना होती है शास्त्रों में जो आपको सुनने में बड़ा ही अद्भुत लगेगी। कभी कभी हम जब लेक्चर सुनते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि कठोर तपस्या साधना करनी चाहिए, रोज मंगल आरती में आना चाहिए, ध्यान से जब करना चाहिए, तो कभी कभी भक्ति करने का प्रयास करते हैं और बड़ी सक्सेसफुली करते हैं, लेकिन इससे भी ईगो आ जाती है, समझ रहे हैं, इतनी को आ जाती है जानते पूछी पांच साल से मैंने एक भी मगर आती नहीं की, जानते पूछी पांच साल से एक भी मैंने माँ का जब अनटेंटिवली किया, अटेंटिवली किया, प्रसाद लिया, हमेशा भक्तों की सेवा की, ये भी ईगो आ जाती है, ये भी ईगो आ जाती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का नियम था 25 साल से रोड लाती में जा रहा हूं और उसके अंदर इस बात का ईगो था कि आज मेरा नियम नहीं टूटा। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी आंख नहीं खुली और समय लगभग 4:15 हो चुके थे, तो अब आज उसकी आंख नहीं खुल रही है, उठ नहीं पा रहा है, क्या करें। तो एक व्यक्ति आया उसके पास, उसने कहा भाई उठो उठो, मंगल आती आपका नियम है, बहुत सारा वो नियम टूट जाएगा आपको, फिर उठो। उसने जैसे जो है स्पंज अभी दौड़ पा, फिर उसने पूछा भैसा पहले बताओ कौन हो आपके अंदर, आपने मेरा रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा लिया, आज मेरा रिकॉर्ड जो है हम हो जाता, आप कौन हो। तो जानते व्यक्ति ने क्या कहा, मैं कौन हूं, उसने कहा मैं कलयुग हूं। कहा कलयुग, कलयुग कब से मंगल आरती उठाने लगा भाई, कलयुग तो ओल्ड उल्टा सुनाता है। उसने कहा मैंने आपको इसलिए उठाया ताकि आप इसी ईगो में पक्के रहो कि मेरा नियम आज तक मेंटेन है, इसलिए मैंने आपको ताकि आपकी ईगो कम ना हो। तो ये भी कभी कभी भक्तों को बैक स्ट्रोक भी लग जाता है कि पक्की मेन सिद्धांत क्या है कि भक्तों के कभी ईगो होना नहीं चाहिए, बाकी क्या सोचना चाहिए कि मैं कहां पर प्रसाद कर सकता हूं। भक्तों का ये भाव होता है, भक्तों की ये इच्छा होती है, जैसे कि एक वैष्णव भजन था ये जो कि देवीन ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन है, प्रसिद्ध भजन है, हरिया चेन हरिया पेन प्रभु चंद दास सवर चरण बंदो दंदे करी घास। एक भजन का बोल है कि जो भक्त हो चुके और जो भक्त होंगे भगवान के उन सबके चरणों में मैं क्या करता हूं, दान देते कलाकारों के चरणों की वंदना करता हूं। तो कभी कभी भक्ति सोचते हैं कि जो भक्त नहीं है हम उनके प्रति ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन देवीनंदन ठाकुर कह रहे हैं इस वैष्णव भजन में हरिया चेन जो हो चुके हैं, हरिया में जो होंगे आगे चलकर, प्रभुर चंद्र दास भगवान के जो दास बनेंगे, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया जो भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन कल अगर वो भगवान का भक्त बन गया तो आप सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है, वही वैष्णव भजन का दंड मिलने वाला है। सवारे चरण बंधो दंते करी घास, फिर जब वंदन करी देवीनंदन ठाकुर ने तो क्या लिखे हैं, वंदन करी के मोई कृत शक्ति धरी, और मैं कहां वंदना कर सकता हूं, मैं कहां वैष्णव के चरण की धूलि ले सकता हूं, मैं तो जो ये बोल रहा हूं तमो मुदी दोषे मोई दम मात्र करी, ये तो मैं खाली दम कर रहा हूं, दिखावा कर रहा हूं, मैं कहां वैष्णव का सेवक कर सकता हूं। केंद्र ये भाव है कहां, जबकि वो साथ इस भजन के अंदर सारे वैष्णव के चरणों की कामना कर रहे हैं, पूजन का वृंदावन वासी जग नीला चल वासी नवदुबे वासी, जितने भी वैष्णव है सबको कह रहे हैं पूर्ण तो भाव करके मैं सबका सम्मान करता हूं, और बाद में कह रहे मैं कहां सम्मान कर सकता हूं, मेरे अंदर तो बहुत ईगो है, तो मैं खाली दिखावा कर रहा हूं। तो हम भक्तों को ये जो दूसरा विषय है आज के श्लोक का कि टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करना चाहिए, अपना नियंत्रण को एक चेक करना चाहिए, हर महीने जैसे वो इष्ट गोष्ठी होगी ना मंदिर में, इस गोष्ठी के लिए रहता सब क्या चल रहा है क्या ठीक है, अपनी स्वयं की इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए कि मैंने अपने ऊपर नियंत्रण भी कहां तक काबू में आया, क्या कुछ प्रमोशन कुछ एडवांसमेंट हुई या वहीं के वहीं स्थित है, नियंत्रण के ऊपर अपना चेक करना चाहिए कि मैं कितना नियंत्रित हो चुका हूं। देखिए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का एक प्रवर्त श्रीलभुपाल इसी स्थान में आएगा, नवेश्वर 19वां अध्याय और श्लोक संख्या 15 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का ये एक कोट, जब मनुष्य ध्यान से सुनेगा, जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं करता, जब वह किसी से सम्मान नहीं चाहता उल्टे वह अपने शत्रु तक का भला चाहता है तो वह परमहंस कहलाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु मधाई के प्रति, प्रभुपाद जी एक विदेशी बंगाली हमारे देश को बंगाली का जब प्रभुपाद प्रचार के लिए गए तो उसने भरी सभा में प्रभुपाद का आदर किया था, उस सभा में इंश्योरेंस को महाराज जो भक्ति थे महाराज बना रहे थे, कि वो बंगाली खड़ा होकर प्रभुपाद को मुंह पर साफ साफ बोलेगा कि क्या तुम विदेशों को भक्ति हिंदू बना रहे हो, जाओ अपने देश में वहां प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा और बाद में प्रभुपाद ने उससे मिल गए और प्रभुपाद जी ने कहा कि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कोई बात किया वो ऐसे बोली। तो असली वैष्णव कौन है? जो अपने शत्रु का भी भला चाहता है, शत्रु के लिए भी प्रार्थना करता है प्रभु, इसको कुछ मांगे देना। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, एक प्रभु ये जानता नहीं है मेरा पिता कि ये क्या कर रहा है, मैं तो आपका सेवक हूं, इसको क्षमा कर देना। हरिदास ठाकुर हम देखते हैं, हरिदास ठाकुर की पिटाई हो रही है, हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर देना, ये जानते नहीं क्या करे, मैं तो आपका सेवक हूं। तो वैष्णव की जो परिभाषा है, और वैष्णव जानते कौन होता है, जो अन्य वैष्णव की सहायता करता है, ये भी बंदी ठाकुर का कोट है। एक वैष्णव की सच्ची परिभाषा ये है कि वो दूसरे वैष्णव की हेल्प करता है, मदद करता है, उसको उठाता है, इससे पता चलता है कि वो कितना प्योर वैष्णव। ये नहीं कि दूसरे वैष्णव अपना दिखाया कि मैंने इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की और पफ तक हो जाए और फिर बाद नीचे चला जाए। लेकिन सच्चे वैष्णव की परिभाषा क्या, वो दूसरे वैष्णव की सहायता करे, उस वैष्णव को किस चीज की आवश्यकता है, यही तो हमारी सफलता का राज है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो दूसरा भक्तिपुर ठाकुर कहते हैं इसी प्रसंग में कि एक वैष्णव की मान ऐसे पहचानी जाती है उसने कितने वैष्णव बनाए हैं, कितने वैष्णव वो बना चुका है। और भगवान जी हमारे नेता इस दृष्टि से लेकिन पूरे विश्व में जान लगे ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने वैष्णव बनाया। तो वैष्णव का ये गुण होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता, जो यहाँ पर चंद्रमा देवता ने किया। युधिष्ठिर महाराज की साथ हम देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजा सत्रवा, तिथि सुस्वय का आलोचना सुहृद सर्वदेहिना अजा सत्रव शांता सागर साधु आभूषण। इस महानीति स्वामी एक बार बता रहे थे कि जब जब माताएं जो है ना पुत्र से गहना खरीद के लाए, मान लेते नहीं हमको भी खरीद के लाए, और जब वो अपनी सहेली से बात करती है तो वो जानने कैसे बात करती है, वो बात करते करते हाथों को भी आगे ऐसे से करती है ताकि सहेली पूछी नहीं उठी है क्या, और कहां से खरीदी, कितने में आई। तुम्हारा बता रहे थे जैसे वो नया नया आभूषण खरीदने वाली माता जब बात करती है अपने आभूषणों को छलकाती है, दिखाती है ताकि उन्हें कोई देखे, महाराज कह रहे थे ऐसे ही वैष्णवों को भी अपने आभूषण छलकाने चाहिए, साधु आभूषण। जैसे वो माता दिखा रही है अटूटी अटूटी अपनी विनम्रता और दूसरे वैष्णवों को दिखानी चाहिए। तिथि शस्त्र जैसे कितना सुंदर श्लोक है, तिथि शस्त्र का आरोग्य का सुहृदन सर्वदेहिना जा सत्र शांता साधो साधु आभूषण। हमारे पास भी आभूषण है, हमें भी आभूषण पहनने चाहिए, लेकिन और ये आभूषण ना के पहनने चाहिए बल्कि चलाने भी चाहिए, दिखाने भी चाहिए। उस माता की तरह की यस ये नए नए आभूषण मैंने पहना है, अभी कौन सा अजा सत्रवा, युधिष्ठिर महाराज ने ये आभूषण पहना था इसलिए उनका नाम था अजा सत्रवा। जब दुर्योधन ने देखा कि वो वनों में है तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया उनको गिराने का, उनको मारने का। तो चित्ररथ नाम के गंधर्व आए, वो दुर्योधन आया था सेना लेकर आक्रमण करने कि वहीं वनों में मार डालूंगा उनको। तो चित्ररथ नाम के गंधर्व आए और उन्होंने क्या किया, दुर्योधन को उठाया और उनको ले गए और दुर्योधन का आसार है। दुर्योधन क्या कह रहा है, हे युधिष्ठिर हे भीम हे अर्जुन मुझे बचाओ, ये गंधर्व मुझे लेके जा रहा है। तो भीम और अर्जुन ने कहा बहुत अच्छा हुआ, सारी समस्या चल गई, अब कुछ समस्या नहीं, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको मार डालो। लेकिन जब युधिष्ठिर ने क्या कहा, नहीं बढ़िया, नहीं भीम नहीं अर्जुन, ये हमारा भाई है, फिर भी हम इसे इसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और अर्जुन को अर्जुन ने चित्र गंधर्व को हराया और वापस लेकर आया। तो जानते दुर्योधन को क्या हुआ, दुर्योधन नीचे उठा उसने कहा कि आज के बाद पांडवों के प्रति द्वेष का जान बचाई, आज के बाद इनसे ये मेरे भाई आलिंगन किया एकदम प्योर हो गए। लेकिन जानते हैं फिर से महाभारत हुआ बाद में, क्यों हुआ, क्योंकि रसातल के जो राजा है, रसातल नीचे लोग है ना, तो वहां के राजा है निवात कवच, वो आए जब दुर्योधन अपने महल में पहुंचा, उन्होंने कहा भाई तुम्हें कंकड़ों ने बचा लिया, तुमने बनाई ये अर्जुन और इनसे क्या दोस्ती कर ली है। हम लोगों की जो ईगो है ना, आसुरी गुण का मतलब है ईगो, ये कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसा संत आने से दुर्योधन शाम तक फिर से नेगेटिव हो गए। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जब हम किसका संत करते हैं, हमें अपने संघ से जाना जाता है। हमारा संघ के साथ एक वैसा सावधान रहता है कि हमें संघ कैसा करना चाहिए।
तो खैर वैसे 9 बज गए हैं,
तो आपका आपकी ओर से कोई चर्चा या कोई तो कोई प्रश्न है जिस सामने चर्चा की, हालांकि अभी इसमें कुछ है आपकी ओर है कोई प्रश्न आपसे लेके बोलिए।
क्योंकि मैं दोष नहीं करता हूं और मेरे शिष्यों में क्या है,
वो माया से पंगा लेते हैं और प्रे नहीं करते। तो सर ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें किसी भी क्षण असावधान नहीं रहना चाहिए, कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। जब यहां पर चंद्रमा या और दूसरा जैसे आपका प्रश्न है कि शिव जी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं, देखिए जब सबसे रेस्पेक्टेड होता है गुरु जी, है ना, जितना भी यहां पर भक्त लोग हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट आ जाए या कुछ आ जाए, लेकिन अगर गुरु जी आकर कुछ कहे भैया ऐसे सेवा करो और कोई डिसाइबल उनकी भी ना माने तो फिर पैसा पाओ, तो यहां भी वही स्थिति है। बृहस्पति तो सारे देवताओं के गुरु और वो उनको समझा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, वो फिर भी नहीं मान रहे। तो शिव जी ने जाकर क्या सोचा, शिव जी ने ये सोचा कि अगर मैं इनको बोलूंगा तो चूंकि मैं क्या हूं वैश्वान यथा संभो, तो इनका पाप और बढ़ जाए और हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। जैसे कि एक बार करुणा के पास एक शिष्य आया, वो गृहस्थ था, तो उसने क्या किया कि वो तलाक लेना चाहता था अपनी पत्नी से। तो रूपा जी के पास आया, रूपा मैं अपनी पत्नी के सामने रहता, मैं तलाक लेना चाहता हूं। रूपा जी ने कहा कि देखो तलाक लेना ठीक नहीं, हमारे हमारे तो शास्त्रों में नहीं है और तुम तो खत्म हो। तो दूसरी बार आया आपसे कुछ महीने बाद, रूपा मैं तलाक लेना चाहता हूं, मैं नहीं ले सकता। तो रूपा ने फिर से मना किया। तीसरी बार जब वो आया कुछ नहीं बात की, प्रभात मैं नहीं कह सकता इनके साथ मैं तलाक लूंगा। तो प्रभात जी ने उन्हें परमिशन दी, इसी में तुम तलाक ले लो। तो प्रभात के साथ में जो उनके सेक्रेटरी बैठे थे, प्रभात जी से कहा, प्रभात आपने इसे परमिशन क्यों दी, शास्त्रों में वर्णन है और हमारे जैसे सिद्धांत कहीं ये नहीं है, और कम से कम आप इसे परमिशन तो ला देते हैं, ठीक है ये जो भी करता। तो प्रभात जी ने ये उत्तर कहा, प्रभात जी ने कहा अगर मैं इसको परमिशन नहीं देता ये मेरी गुरु हो गया करता, और गुरु हो गया करता तो इसका अपराध वही होना ज्यादा होता। अब मैंने इसको परमिशन देने से अपराध तो भी लगेगा इसको, लेकिन इसका अपराध थोड़ा कम होगा। तो शिव जी की वही स्थिति है, शिव जी जानते थे कि मैं बोलूंगा ये कभी नहीं मानने वाला है, ठीक है।
शिव जी ने जो है उसका साथ इसलिए दिया बृहस्पति जी का, क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु के पुत्र थे। तो बजाय के लिए समझाने के लिए गुरु के पुत्र थे इसमें आसक्ति दिखाई देती है, और ये कि वो जो है उनके साथ कुछ अन्याय हुआ था और वो जो चंद्रमा जी थे उनके अधर के अगेंस्ट शिव जी युद्ध कर रहे थे, उससे कुछ और समझ आते हैं, ज्ञान समझ आता है, उससे लगता है कि हाँ ठीक है थे। पर अगर गुरु के शिष्य गुरु के पुत्र और ये सारे संबंध की तरह हम सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि हम भी उसकी आसक्तियों में फंसे हुए हैं और मुझे उसकी आसक्तियों में फंसे हुए हैं, जैसे ऐसे समझ रहे हैं।
देवता लोग देखिए स्वर्ग में जब देवता लोग क्योंकि पुण्यशील होते हैं, जब नीचे आते हैं तो पांचवें समय प्रार्थना की है, देवता लोग होते हैं हे प्रभु अगर हमारा एक पुण्य भी शेष हो इसलिए उस पुण्य के बारे में एनकैशमेंट क्या करना, भारत देश में जन्म देना, भारत खंड में जन्म देना, क्योंकि तो वहां पर आपको याद करना बहुत आसान है। तो इस पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष है, लेकिन जहां हम रहते हैं इस क्षेत्र का नाम भारत खंड है, ये भारत खंड कहलाता है और पूरी पृथ्वी भारतवर्ष कहलाती है। यदि कभी कभी जब वो पुरोहित जब हवन कराता है तो वो आपने सुना ध्यान से, वो बोलता है भारत खंड भारत वर्ष। तो स्वर्ग लोक में जाकर के भक्ति करना बहुत कठिन कार्य है, वहां ऐश आराम बहुत ज्यादा है। जैसे उर्वशी ने पूर्वरण को कहा कि यहाँ ये संबंध नहीं करते, वो रिश्ते में क्या रहता है, यहाँ संबंध बनाते हैं, और नीचे के लोगों में तो बहुत कठिनाई है। तो ये जो लोग हैं मृत्यु लोग हैं और वो उससे भी बढ़कर भारत लोग है, और भारत में भी एक दिल्ली है और दिल्ली में एक पंजाबी लाल मंदिर है, तो सबसे दोनों क्या पंजाबी लाल मंदिर सबसे बेहतरीन सेंटर है मेरे हिसाब से दिल्ली में जितने भी मंदिर, ठीक है। गुरु श्री गुरु मान के गुरु के नंदे।